Krishna, Krishna. पार्वते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 13।
श्री भगवान उवाच।
श्री भगवान उवाच।
योग आध्यात्मिकः पुंसा।
योग आध्यात्मिकः पुंसा।
मतो निःश्रेयसाय च।
मतो निःश्रेयसाय मे।
मतो निःश्रेयसाय मे।
मतोऽस्निःश्रेयसाय मे।
अत्यन्तो परतिर्यत्र।
अत्यन्तो परतिर्यत्र।
दुःखस्य च सुखस्य च।
दुःखस्य च सुखस्य च।
तमीमं ते प्रवक्ष्यामि। यमवोचं पुराणगे।
यमवोचं पुराणगे।
ऋषीणां श्रोतु कामाना।
ऋषीणां श्रोतु कामाना।
योगं सर्वागने पुणं।
योगं सर्वागने पुणं।
चेत चेत खल्वस्य बन्धाय।
चेत खल्वस्य बन्धाय।
मुक्तये चात्मनो मतम्।
मुक्तये चात्मनो मतम्।
गुणेषु सक्त बन्धाय।
गुणेषु सक्त बन्धाय।
रतं वा पुंसि मुक्तये।
रतं वा पुंसि मुक्तये।
अहं ममाभिमानो ते।
अहं ममाभिमानो ते।
कामलोभादिभिर्मले।
कामलोभादिभिर्मले।
वित्तं यदा मनः शुद्धम्।
वित्तं यदा मनः शुद्धम्।
दुःखम सुखमं समम्।
दुःखम सुखमं समम्।
तदा पुरुष आत्मानम्।
तदा पुरुष आत्मानम्।
केवलं प्रकृते परम्।
केवलं प्रकृते परम्।
निरन्तरं स्वयं ज्योति।
निरन्तरं स्वयं ज्योति।
अणिमानम खंडितम्।
अणिमानम खंडितम्।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रतिदिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो भगवान के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, अब सबको आश्चर्य लग सकता है कि ये तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, सूत गोस्वामी के मुख से, या मैत्रेय मुनि के मुख से, परंतु श्रीमद् भागवत मूल रूप से भगवान के मुख से कहा गया है। श्रीपाद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं अभी जो हमारे पास भागवत ग्रंथ है उसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं, परंतु ये भागवत वास्तविक रूप में भगवान के मुख से निकला है और वह भागवत वैकुंठ में है। और जो भागवत भगवान के मुख से निकला उस भागवत में शत कोटि 100 करोड़ श्लोक हैं। उस 100 करोड़ श्लोक वाले भागवत को कॉम्पैक्ट करके बहुत सार रूप में बनाकर श्री वेद व्यास जी ने हमारे लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि वेद व्यास जी जानते थे प्रायेण अल्प आयुष्य, कलयुग में प्राय आयुष्य बहुत कम है। सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतय मंद भाग्या उपद्रुता। कलयुग में आयु कम है, बुद्धि भी कम है और ग्रंथ सुनने की लालसा भी बहुत कम है। अब 18,000 श्लोक वाले भागवत को ही हम नहीं पढ़ते हैं तो 100 करोड़ वाले श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? इसलिए वेद व्यास जी ने सार रूप में श्रीमद् भागवत हम सबको प्रदान किया है। वैसे मूल रूप से यह भागवत भगवान के मुख से निकला है और हम जो यहां पर कथा श्रवण कर रहे हैं कपिल देव का उपदेश, वह भी भगवान के मुख से। इसलिए आज के 13वें श्लोक में कहा गया है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। भगवान कैसे हैं? कहते हैं श्री युक्त। श्री का अर्थ होता है सुंदरता, सुंदर भगवान ने कहा। श्री का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। श्री का अर्थ होता है यशवान, धनवान, ज्ञानवान। तो सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान कपिल कुछ बोले वाच। भगवान कपिल का उपदेश यहां से प्रारंभ होता है और प्रारंभ में 13वें श्लोक में भगवान कपिल अपनी पूरी शिक्षा का सार बता रहे हैं। होता है ना, फिल्म बहुत बड़ा होता है लेकिन ट्रेलर जो होता है। प्रभुपाद जी ने भी भागवत के अध्याय को शुरू करने से पहले उस अध्याय का सार भूमिका के रूप में दिया है। तो भगवान कपिल देव सार बताते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निहसे साय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। हे मां, इस संसार में प्रायः सब लोग दुखी हैं। इस संसार में प्रायः सब लोग चिंतित हैं और संसार के लोग अपने दुख को दूर करने के लिए इस संसार के किसी उपाय को अपनाते हैं। वास्तव में इस संसार में जितने भी दुख हैं सब भौतिक दुख हैं, क्योंकि दुख आध्यात्मिक नहीं होते हैं। आध्यात्मिकता में तो सुख ही सुख है, सत चित आनंद। इस संसार में हम जो दुख भोगत रहे हैं ये सब भौतिक दुख है और भौतिक उपाय के द्वारा भौतिक दुख को काटा नहीं जा सकता है। मल से मल को कभी नहीं धोया जा सकता है, साबुन से बिगड़े हुए वस्त्र को धो सकते हैं। कर्मणा कर्म निहारो न हात्यंतिक इष्यते अविद्वी अविकारित्वा प्रायश्चितम विमर्शनम। भागवत के 6 स्कंद में परीक्षित महाराज इस बात को कहते हैं, कर्मणा कर्म निहारो, नहीं आत्यंतिक इष्यति। भौतिक कर्म से भौतिक कर्म को कभी नहीं काटा जा सकता है। हम भौतिक रूप से दुखी हैं तो भौतिक उपाय के द्वारा उस दुख को कभी नहीं काट सकते हैं। भौतिक दुख से यदि मुक्त होना है तो आध्यात्मिक उपाय करना होगा, और यदि आध्यात्मिक दुख भी है तब भी आध्यात्मिक उपाय करना होगा। तो भगवान कपिलदेव प्रारंभ में ही प्रथम शिक्षा प्रथम श्लोक में कहते हैं, योग आध्यात्मिकम पुंसाम। इस संसार के पुंसाम माने मनुष्यों के लिए, मतो निश्रेय शाय में अर्थात मेरे मत से, मेरा मानना ऐसा है कि संसार में जितना भी दुख है ये सभी भौतिक समस्याओं का समाधान मात्र आध्यात्मिकता से ही हो सकता है। योग आध्यात्मिक, जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक समस्याएं हैं ये सब का समाधान आध्यात्मिक से ही हो सकता है। मैं ये मेरा मानना है, अब भगवान का मानना है तो हमें मानना ही होगा। निःश्रेयस आय, श्रेयस का अर्थ होता है कल्याण, और निःश्रेयस आय का अर्थ होता है नितराम कल्याण। आध्यात्मिक उपाय से ही इस संसार में रहने वाले मनुष्यों का पूर्ण रूप से कल्याण हो सकता है। तो पुंसाम, ये पुंसाम शब्द विचारणीय है। भगवान कपिलदेव पुंसाम शब्द क्यों लगाए? ऐसा भी कह सकते थे कि संसार में सब लोगों के लिए दुख का उपाय मात्र आध्यात्मिकता ही है, आध्यात्मिक योग ही है, परंतु भगवान जानते हैं कि ये आध्यात्मिक कार्य मात्र पुंसाम मात्र मनुष्य कर सकते हैं, अन्य पशु पक्षी इत्यादि आध्यात्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में मनुष्य को इसीलिए बनाया गया है ताकि वह आध्यात्मिक कार्य करे। यदि आध्यात्मिक कार्य करने के लिए मनुष्य नहीं बनाया होता तो फिर पशु बनना ही अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, चार दिन की जिंदगी है, खा पी कर ऐश करना चाहिए। खाने के लिए ही यदि मनुष्य बने होते हैं तो हम क्या खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं? एक प्लेट, दो प्लेट, 500 ग्राम, एक दो किलो। ये जो सूकर होते हैं वह दिन भर खाते रहते हैं। खाने के लिए ही यदि हम बने होते हैं तो भगवान सूकर न बनाते। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य जीवन मिला है विवाह करने के लिए, गृहस्थ जी हम क्या विवाह करते हैं, हम क्या बच्चे पैदा करते हैं? ये कुत्ते लोग बच्चे पैदा करते हैं, एक साथ 10-15 बच्चे होते हैं। वास्तव में मनुष्य बना है मात्र भजन करने के लिए, ये हम नहीं कह रहे। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, उन श्लोकों में एक श्लोक में कहा गया है, वेद व्यास जी लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। इस संसार में प्रायः पशु क्या करते हैं, आहार भोजन करते हैं, निद्रा सोते हैं, भय अर्थात किसी से डरते हैं, और मैथुन अर्थात विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और विचार किया जाए तो मनुष्य भी यही करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, हम तो कॉलेज में पढ़ते हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन विचार करो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो चाहे ऑफिस में काम करते हो, आप क्यों पढ़ते हो? पढ़ते हैं इसलिए ताकि अच्छे से अच्छी नौकरी मिले। ऑफिस में इसलिए काम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धन कमाए, परंतु वह धन का उपयोग कहां करते हैं? या तो अच्छा बंगला बनाएंगे उसमें सोएंगे निद्रा, या तो अच्छे से अच्छा भोजन करेंगे आहार, या तो विवाह करेंगे बच्चे पैदा, और ज्यादा धन हो गया तो भाई सिक्योरिटी इत्यादि। अल्टीमेट इस संसार के मनुष्य प्राय ये चार कार्य में ही लगे हैं। तो वेद व्यास जी महाभारत में कहते हैं, यदि मनुष्य को आहार निद्रा भय और मैथुनी करना है तो बताओ मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। What is different between animal and human? Think about it. विचार कीजिए क्या अंतर रहा। इसलिए धर्मो ही एको अधिको विशेष। मनुष्य में भगवान ने एक वस्तु ज्यादा दी है जिसके कारण वह मनुष्य कहलाता है, और वह क्या है? धर्मो ही एको अधिक विशेष। भगवान ने मनुष्य को ऐसी शक्ति प्रदान की है ताकि वह धर्म का पालन कर सकता है, आध्यात्मिक योग का पालन कर सकता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक योग नहीं करता है अर्थात धर्म का पालन नहीं करता है तो धर्मेन विहीन बिना धर्म वाला मनुष्य पशु भेर नराणा, पशु के समान। फिर वो मनुष्य और पशु में कहीं कोई अंतर नहीं है। अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है, येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगार चरंती। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भजन नहीं करते हैं, आध्यात्मिक योग का पालन नहीं करते हैं, ते मृत्यु लोके, वह मनुष्य इस मृत्यु लोक पर भार है, भूवि भार भूता बोझ है। हम कहते हैं ना कि तुम तो संसार में बोझ हो, इस पृथ्वी पर बोझ कौन है? जो भजन नहीं करते। और इतना ही नहीं, मनुष्य रूपेण, वे दिखता तो है मनुष्य परंतु मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, मनुष्य के रूप में वो पशु घूम रहे हैं। केवल दिखते हैं शूट बूट टाई है परंतु मनुष्य के रूप में वो पशु है, पशु भजन नहीं करने वाले। तो भगवान कपिल देव अपनी शिक्षा के प्रारंभ में ही कह रहे हैं, योग आध्यात्मिक पुंसा, मनुष्य के लिए आध्यात्मिक योग ही मतो निश्रेयसाय में कल्याणकारी मार्ग है। उससे भौतिक कल्याण भी हो सकता है और आध्यात्मिक कल्याण, संसार इस जीवन में भी वो व्यक्ति सुखी हो जाता है और मरने के बाद भी व्यक्ति सुखी है। यह आध्यात्मिक मार्ग है। अत्यंतो परवी यत्र दुखस्य च सुखस्य च। इस संसार के सभी दुखों से मुक्त योग करना चाहिए। योग के बारे में बता रहे हैं। जब भी हम ये योग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में धारणा होती है सिर नीचे पांव ऊपर। योग माने हम बस यही समझते हैं, सिर नीचे है पांव ऊपर है और कुछ क्रिया कर रहा है। योग का अर्थ सीधा सीधा है, योग माने टू जॉइंट, जोड़ना। किसी भी वस्तु को जोड़ने की क्रिया को योग कहा जाता है। जैसे हमारा योग हुआ, मतलब हम जुड़े, जोड़ना। तो छूट क्या गया है जिसे हम जोड़ना चाहते हैं? मानो भगवान कपिल देव कहते हैं आध्यात्मिक योग करना चाहिए, तो ऐसा क्या वस्तु छूट गई है जिससे हम उसे जोड़ना चाहते हैं? छूट गया है। क्या छूटा है? हम सब आत्मा है और ये आत्मा परमात्मा का अंश है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। गीता में भगवान कहते हैं ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मनोसष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अर्जुन मम एव अंश, इस संसार में जितने भी जीव देख रहे हैं ये सब मेरे अंश हैं। मम अंश, और बीच में शब्द लगा रहे हैं एव, एव का अर्थ है निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट, कोई दोराय नहीं। सभी जीव, सभी आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा तभी ही सुखी हो सकती है जब वो परमात्मा के साथ रहे। जैसे ही आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है, भगवान से दूर हो जाती है, तो वह दुखी हो जाती है। तो फिलहाल क्या हुआ है, हम भगवान से अलग हो गए, भगवान का वियोग हो गया है। भगवान अपने धाम में है और हम वहां से यहां भौतिक जगत में हैं, न जाने क्या ढूंढने के लिए आए हैं। हम भौतिक जगत में आए हैं, फंसे हैं। बस दुख एक ही बात का है। संसार के लोग सोचते हैं मैं इसलिए दुखी हूं, इसलिए दुखी हूं। दुख का एक ही कारण है, अल्टीमेट एक ही कारण है कि हम भगवान से दूर हो गए हैं। यही है सबसे बड़ा दुख, हमारा भगवान से वियोग हो गया है। बस उस भगवान से योग करने की जो क्रिया है, उस भगवान से जोड़ने की जो क्रिया है, उसे योग कहा जाता है। प्रभुपाद जी अक्सर एक दृष्टांत देते थे कि एक बार एक मेले में एक पिताजी और उनका छोटा सा बच्चा मेले में घूमने के लिए गए, और आप सब जानते हैं मेले में बहुत भीड़ होती है। तो उस बच्चे ने पिताजी का हाथ पकड़ कर रखा था उस भीड़ भाड़ में, बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ छोड़ दिया, छूट गया। बच्चा अपने पिता को ढूंढने लगा, पिता भी अपने बच्चे को ढूंढने लगा, परंतु बच्चा मिला नहीं। पिताजी चले गए पुलिस स्टेशन में दिखाकर, और ये बच्चा अब तो मेला समाप्त हो गया। वो बच्चा मेले से बाहर निकला और जिस समय से अपने पिता का हाथ छूट गया, उस समय से वो बच्चा रोने लगा। फिर बच्चा रो रहा था, रास्ते पर आया, कुछ लोगों ने सोचा कि लगता है इसे भोजन नहीं मिला है इसलिए दुखी है। तो कुछ लोगों ने बहुत सारा भोजन लाकर उस बच्चे को दिया, बच्चे ने खाया, फिर भी बच्चा रोता रहा, रोना बंद नहीं किया। तो कुछ लोगों ने सोचा कि बच्चे के पास पैसे नहीं है इसलिए रो रहा है, तो कुछ ने 2-5 हजार रुपये बच्चे के जेब में डाल दिए, फिर भी बच्चा रोता रहा। तो किसी ने सोचा कि ठंडी का समय है, बच्चे की ठंडी लग रही है, तो किसी ने चद्दर कंबल दे दिया, फिर भी बच्चा रोता रहा। लेकिन चौथा व्यक्ति आया और देखा कि ये बच्चा कोई साधारण घर का नहीं लग रहा है। चौथा व्यक्ति उस बच्चे को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर गया, कहा कि ये बच्चा रो रहा है, भटक रहा है, जरा देखो। तो पुलिस वाले ने कहा हम इसी को तो ढूंढ रहे थे, इसके पिताजी बहुत बड़े रईस हैं। तुरंत पुलिस वाले ने फोन किया और पिताजी मर्सिडीज कार लेकर आए और बच्चे को कार में बिठाकर घर चले गए। बच्चा खुश हो गया। कथा बहुत छोटी है परंतु उपाध्याय है। वह बच्चा और कोई नहीं, हम सब हैं, और वह पिता और कोई नहीं, साक्षात कृष्ण है। जैसे ये रईस पिता, वैसे कृष्ण भी सबसे धनी है, धन की कोई कमी नहीं। और जब तक हम भगवान के साथ थे तब तक सुखी थे, परंतु भगवान से अलग हुए, हमारा दुख, हमारा रोना शुरू हो गया। फिर रोते रोते संसार में कोई भोजन दे देता है, कितना भी सुंदर भोजन, फिर भी रोना शुरू ही होता है। सब लोग रोते हैं, चाहे रोड़पति हो करोड़पति हो, रोना सबका है। चाहे धन मिले, भोजन मिले, गाड़ी मिले, सब। लेकिन वह बच्चा तभी सुखी हुआ जब उसके पिताजी उसे मिले। वैसे हम भी संसार में भटक रहे हैं, दुखी हैं, और तब तक सुखी नहीं होंगे जब तक हमारे वास्तविक पिता हमें नहीं मिलेंगे। और हमारे वास्तविक पिता भगवान कृष्ण है। जैसे ही भगवान के साथ हमारा मिलन हो जाता है, भगवान हमें मिल जाते हैं, हम सुखी हो जाएंगे। इसलिए योग, और महत्वपूर्ण शब्द आध्यात्मिक योग। भगवान कपिल को पता था कि कलयुग में बहुत सारे लोग होंगे जो बगीचे में जाकर योग करेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब भौतिक योग है। यहां समझना, इतना प्रवचन सुनकर कोई चला जाए तो फिर घर पे जाकर करने लगेगा अपना क्रिया, तो वो सब क्रिया से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक योग होना चाहिए, तो आध्यात्मिक योग ही इस संसार में सभी लोगों के दुख का निवारण है। समझ में आई यह बात? ये केवल एक श्लोक में बता दिया, अब इसको विस्तार से बताने जा रहे हैं। भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं, तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यम वोच पुराणघे ऋषिणां श्रोतु कामानां योगं सर्वा गणै पुणम। हे अनघे, इस श्लोक में भगवान कपिल अपनी मां को संबोधन दे रहे हैं। भगवान कपिल अपनी मां को क्या कर रहे हैं? अनघे, जैसे आप पूरा नघे शब्द है ना, पूरा नघे, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो पूर अनघे होगा, अनघ। अघ का अर्थ होता है पाप और अनअघ का अर्थ होता है निष्पाप, और अनअघ को सप्तमी विभक्ति संबोधन में अनघे कहा जाता है, अनघे। संबोधन दे रहे हैं, हे निष्पाप साध्वी। इससे हमें यह पता चलता है कि भगवान कपिल अब भागवत सुनाने जा रहे हैं, प्रवचन करने जा रहे हैं, लेकिन प्रवचन के प्रारंभ में वे कह रहे हैं कि हे मां, आप बिल्कुल निष्पाप हो, आप में कोई किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, इसलिए मैं जो बोलने जा रहा हूं उस बात को आप ठीक ठीक रूप से समझ पाओगी। देखिए, भागवत सुनना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन भागवत को समझने के लिए हमें निष्पाप बनना होगा। कुछ लोग कहते हैं बस हम केवल भागवत ही सुनेंगे, भागवत ही सुनेंगे, लेकिन भागवत को तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक पाप से मुक्त न हो। यहां पर सुनने वाले श्रोता जो है वह निष्पाप है, तो पाप से मुक्त होकर या पाप से मुक्त होते होते भागवत सुनना चाहिए। और पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना है? मांसाहार नहीं करना, चार नियम का पालन, जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। प्रभुपाद जी ने जो चार नियम बताए हैं, ये चार प्रकार के पाप न करना और उसके साथ 16 माला जप करना। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा जो पाप है उससे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो इससे ये ज्ञान होता है कि भागवत को सुनना चाहिए, लेकिन भागवत सुनने के साथ साथ 16 माला जप भी करना चाहिए। कल मुझे कोई भक्त बता रहे थे, प्रभु जी आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लगता है बस अब कथा ही सुनते रहे। तो मैंने कहा क्या माला नहीं जपना है आपको? देखिए यहां पर बहुत सुंदर कहा गया है, यदि इस कथा को आप समझना चाहते हो, कथा में आनंद है, कथा में बैठोगे श्रित मधुर रित मधुर सब कुछ मधुर मधुर लगेगा, परंतु इसे जीवन में अप्लाई यदि करना है, इसे समझना है, तो 16 माला का कम से कम 16 माला जप करके जब आप कथा में बैठोगे तो सारी बात समझ में आती जाएगी। नहीं तो फिर बाउंसर बोल होता है ना क्रिकेट में, नहीं तो ये बात जो है ऊपर से चली जाएगी, यहां नहीं आएगी। तो निष्पाप होकर कथा सुननी चाहिए। और अद्भुत, भगवान कपिल एक स्त्री को कथा सुना रहे हैं। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं स्त्रियों को कथा नहीं सुननी चाहिए, स्त्रियों को माला नहीं जपनी चाहिए, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर, स्त्रियों का अधिकार इस शास्त्रों के ऊपर नहीं है, स्त्रियों को यह सब नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कपिल देव ने दिखा दिया कि वास्तव में स्त्री ही शास्त्र सुनने के योग्य है। भगवान कपिल ने अपने आचरण से दिखा ये केवल स्त्री को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि संसार में कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं, सब लोग आत्मा है। और एक आत्मा का अधिकार होता है अपने पिता के बारे में जानना। हे अनगे, हे मां, तुम बिल्कुल निष्पाप हो, तुम साध्वी हो और सर्व अंग नैपुणम, पर आपके सभी अंग निपुण है। इसका भाव यह है कि अंगों में एक अंग है कान और नेत्र। आपका कान और नेत्र दोनों निपुण है। आपके नेत्र मछली के समान, मछली कभी आंख को बंद नहीं करती है। तो आप जब कथा सुनती हो तो बिल्कुल एक दृष्टि से सुनती हो, और हम लोग यहां कथा प्रारंभ होती है और यहां हमारे नेत्र बंद हो जाते। सर्व अंग निपुण है, आपके नेत्र भी निपुण है और आपके कान भी निपुण है कि आप अपने कान से और कुछ न सुनते हुए मात्र कथा सुनती हो। आपका मन भी निपुण है कि आप अपने मन को कथा में लगा सकती हो। सर्व अंग निपुण है। और हमारा क्या है, शरीर से तो यहां आकर बैठ गए हैं 10 किलोमीटर दूर, शरीर से तो यहां बैठे हैं, परंतु मन घर पे है। बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्कूल में चले गए होंगे, ऑफिस में क्या होता होगा, माल तो ठीक से पहुंच गया होगा। शरीर से बैठ जाते हैं परंतु मन, परंतु कथा सुनने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को कथा में लगाना चाहिए, तब इसका पूरा पूरा फल मिलता है। सर्वत्र सर्व कारकान, अपनी सभी इंद्रियों को लगाना। जैसे आप सब जिसको क्रिकेट मैच में बहुत इंटरेस्ट है, मान लो वो ऑफिस में बैठा है और वर्ल्ड कप चल रहा है और उसमें भी भारत और पाकिस्तान फाइनल मैच में आए हैं, और ऑफिस में टीवी नहीं है केवल रेडियो है, और उसमें भी 50 ओवर की मैच है, अंतिम ओवर चल रही है और अंतिम ओवर के 3 बॉल बाकी हैं और अब तक रिजल्ट नहीं आया है। अब 3 बॉल में रिजल्ट आने वाला है, कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? और उस समय सभी काम को छोड़कर रेडियो के पास कान रखकर बैठ जाते हैं सुनने के लिए अब क्या हो रहा है कॉमेंट्री। और उसमें यदि कोई आ जाए, सेठ जी सुनने दो, कोई भी कुछ भी डिस्टर्बेंस थोड़ा भी होता है तो कहते हैं अपना कान उसे रेडियो के ऊपर होता है। तो जैसे हम उस रेडियो को सुनते हैं वैसे कथा को सुनेंगे तो पूरा पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो पूरा लाभ नहीं मिल सकता। तो सर्व अंग निपुण हे मां, आपके सभी अंग निपुण हैं। और श्रोतु कामाना, आप सुनने की इच्छा कर रही हो, अवोचत, तो बहुत पहले मैंने यह, मैं जो आपको उपदेश देने जा रहा हूं, यह उपदेश बहुत पहले नारद इत्यादि ऋषि मुनियों को मैंने दिया था, क्योंकि वे सब श्रोतु कामना, वे सब इस प्रवचन को सुनने की इच्छा किए थे। तो भगवान कपिल ने नारद इत्यादि ऋषि मुनियों को प्रवचन कब सुनाया? श्लोक में एक शब्द है श्रोतु कामना। जब नारद इत्यादि ऋषि मुनियों ने यह सुनने की इच्छा की तब मैंने उनको सुनाया। प्रचारक के लिए एक बहुत सुंदर बात यहां पर आई है, प्रवचन उसे ही सुनाना चाहिए जो सुनने के इच्छुक है, जबरदस्ती किसी को बिठा नहीं देना चाहिए। जबरदस्ती यदि किसी को बिठा भी दिया तो न तो सुनेगा न तो उसका लाभ होगा। श्रोतु कामना, जिसे सुनने की इच्छा है उसे यदि हम प्रवचन सुनाते हैं तो उसका लाभ होता है सुनने वाले को, बोलने वाले को। हम देखिए हमारे इतिहास में वक्ताओं ने उन्हीं लोगों को कथा सुनाई जहां श्रोताओं ने इच्छा की। कृष्ण ने अर्जुन को तभी गीता का ज्ञान दिया जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने इच्छा की कि प्रभु कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मुट चेता यत् श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्न। आप मुझे कहिए, ब्रूहि बोलिए, मुझे उपदेश दीजिए, तब कृष्ण ने भगवद गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से वास्तव में गीता प्रारंभ हुई। तब तक कृष्ण गीता नहीं बोले, श्रोतु का मान। परीक्षित ने जिज्ञासा की, तब सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई। 88,000 ऋषि मुनि ने जिज्ञासा की, तब सुध गोस्वामी ने कथा सुनाई। भरद्वाज ऋषि ने जिज्ञासा की, तब याज्ञवल्क जी ने रामायण सुनाई। देवी पार्वती ने जिज्ञासा की, तब शिव जी ने भागवत और रामायण कथा सुनाई। श्रोतु का मानम, जो सुनने की इच्छा करते हैं उनको सुनाना चाहिए। तो बहुत पहले पूरा नगर, पूरा माने बहुत पहले मैंने यही कथा नारद इत्यादि ऋषि मुनियों को सुनाई थी, चेत खलु बंधाय, और वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं 15वें श्लोक से कि हे मां, चेत खलवस्य बंधाय मुक्ति चात्मनोम मतम। इस संसार में मेरे द्वारा और अनेक आचार्य ऋषि मुनियों के द्वारा माना गया है कि चेत खलु अस्य बंधाय, चेत का अर्थ होता है मन। हमारे शास्त्र में मन को चित भी कहा गया है, कहते हैं चित ही, खलु माने निश्चित ही, कहते हैं चित ही अस्य बंधाय, इस संसार में बंधन का कारण एकमात्र हमारा मन है। देखिए उपदेश प्रारंभ करते हैं, बंधन का कारण क्या है? मन। और मुक्ति च आत्मनः मतम, और इस आत्मा की मुक्ति का कारण भी मन ही है। इस आत्मा के बंधन का कारण ही मन है और मुक्ति का कारण भी मन ही है। अन्य एक जगह पर भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाय विषयासंग निर्मुक्त विषय मन। मन ही इस संसार के जीवों के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही कैसे, मन के द्वारा व्यक्ति कैसे बंधन में फंस जाता है? मानो देवहूति ने पूछा तो आगे कहते हैं, गुणेशु सक्तम बंधाय, गुणेशु सक्तम, सक्तम माने आसक्तम, आसक्ति, और गुणेशु माने इस संसार के जो तीन गुण है, गुण के द्वारा विषय उत्पन्न होते हैं। गुणेशु सक्तम माने विषयों में आसक्ति, कहते हैं विषयों में आसक्ति होने से बंधाय, ये मन के द्वारा संसार के विषयों में आसक्ति हो जाती है, और संसार के विषयों में आसक्ति होने के कारण बंधन उत्पन्न होता है। तो विषयों में आसक्ति होने से बंधन होता है, और मुक्ति कैसे होती है? रतम वा पुंसी मुक्तये, पुंसी माने परमात्मा और रतम माने अनुराग। कहते हैं विषयों में आसक्ति करने से व्यक्ति बंधन में फंसता है, और परमात्मा में आसक्ति करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखिए आसक्ति को नहीं छोड़ना है, सब लोग को किसी ना किसी के प्रति आसक्ति होती है, किसी को माँ के प्रति, पिता के प्रति, घर के प्रति, गाड़ी के, बंगले के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, धन के प्रति, आसक्ति सबको है, और आसक्ति से मुक्त नहीं होना है, परंतु उस आसक्ति को डाइवर्ट करना है। हमारी आसक्ति संसार के भौतिक विषयों में है, वही आसक्ति को भगवान में यदि कर देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। देवते ने कहा कि बहुत सुंदर बात बताई, लेकिन इसको विस्तार से समझाओ, कैसे यह आसक्ति कैसे होती है? इस संसार में हम लोग आसक्ति में कैसे फंसते हैं? आसक्ति का कारण क्या है? आसक्ति का कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही आसक्ति होती है। 16वें श्लोक में कहते हैं, अहम ममा अभिमानोत्थे काम लोभा दिवई मले। इस संसार में अज्ञान, जैसे ही व्यक्ति भगवान से दूर होता है, हम सब भगवान से दूर हुए हैं, जैसे ही हम भगवान से दूर होते हैं अज्ञान में फंस जाते हैं, माया के प्रभाव में। और अज्ञान का सबसे पहला स्वरूप क्या है? कहते हैं अहम मम इति। अहम मनान इति अज्ञान। अज्ञान किसे कहते हैं? इस शरीर को मैं मानना, यह है सबसे बड़ा अज्ञान। यह कथा यहां से शुरू होती है, हमारे जीवन की कथा, कथा नहीं व्यथा। हमारे जीवन की व्यथा कहां से शुरू होती है? इसका स्टार्टिंग स्टेज है कि हम इस शरीर को मैं मानते हैं। वास्तव में ये शरीर हम नहीं है, हम तो आत्मा है, पर इस आत्म ज्ञान के अभाव में शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। और जब शरीर को मैं मानते हैं तो शरीर से जो जुड़े हुए संबंधी हैं उसे मेरा मानते हैं। अहम ममा अभिमानो थे। अब ये मैं हूं और ये मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये पुत्र मेरा, ये ऑफिस मेरी, ये गाड़ी, ये बंगला मेरा, ये दूसरा अज्ञान। अब तीसरा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, फिर क्या होता है? जो मेरा है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, प्रेम। ये मेरे हैं, तो जो मेरे हैं उनके प्रति प्रेम, और जो पराये हैं उसके प्रति द्वेष, ईर्ष्या। मेरा है उनके प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति द्वेष, और इस प्रकार से मेरा मेरा करते करते फिर उसे अभिमान बढ़ते जाता है, और अभिमान बढ़ते बढ़ते काम लोभ आदि भीर मले, फिर हृदय में मल उत्पन्न होते जाते हैं। ये मल क्या है? काम लोभ आदि, आदि माने एटेक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, काम लोभ क्रोध इत्यादि। परंतु मुख्य क्या है? काम और लोभ। इस संसार में सबसे बड़ा मल क्या है? काम और लोभ, और साथ ही साथ क्रोध। काम क्रोध और लोभ ही व्यक्ति के मल है, हृदय के मल। क्रोध हो जाता है व्यक्ति, क्रोध जब करता है तो अपना भी बिगाड़ता है और दूसरों को भी बिगाड़ देता है। काम क्रोध और लोभ जब तक हमारे हृदय में है तब तक शांति नहीं मिल सकती। इसलिए गीता में तो भगवान ने काम क्रोध और लोभ को नरक में जाने का सीधा द्वार बताया है। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये काम क्रोध और लोभ त्रिविधम नरकस्य इदम, नरक के सीधे द्वार है। हृदय में काम उत्पन्न हुआ सीधा नरक में जाकर खड़ा रख देगा लोभ और क्रोध। तस्मात, इसलिए ये तीनों को त्याग देना चाहिए। कहते हैं ये काम क्रोध और लोभ कैसे उत्पन्न होता है? इसकी कथा शुरू हुई ना, अज्ञान से, मैं और मेरा, मेरे प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति द्वेष। वित्तम यदा मन शुद्धम दुखम सुखम समम। और ये काम क्रोध लोभ, मैं और मेरा, ये सब भावना के कारण, ये सब मल के कारण दुखम सुखम समम। व्यक्ति दुख और सुख का अनुभव करता है, परंतु जब व्यक्ति वित्तम, इस काम क्रोध लोभ अहम ममता से मुक्त हो जाता है, वित्तम अर्थात मुक्त होना, तब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, मन शुद्धम। और जब मन शुद्ध हो जाता है तो अदुखम, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। असुखम, वह कभी सुख का एहसास नहीं करता। समम, वे दुख और सुख में सम हो जाता है। सम, जीवन में कितना भी दुख आए तब वह विचलित नहीं होता, और सुख आने पर फुदकता नहीं है, सम रहता है। कब? जब मन वश में हो जाए। तो मानो देवहूति प्रश्न करे कि मानो हमारा मन सम हो जाएगा, दुख और सुख में जब समता आ जाएगी तब क्या होगा? जब ये भौतिक विकारों से मुक्त हो जाएंगे, काम क्रोध लोभ, और जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तदा, तदा माने तब, तब पुरुष आत्मानम, तब हम, तभी संसार का जीव पुरुष, आत्मानम का अर्थ होता है परमात्मा। तभी संसार का मनुष्य परमात्मा को देख सकता है। किस प्रकार से देखता है? केवल केवल प्रकृते परम, वह जीव देखता है कि इस संसार में परमात्मा की कृपा से हम सब आए हैं और परमात्मा आत्मा से अलग है, इस प्रकृति से अलग है। निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम, वह जीव देख लेता है कि हम सब परमात्मा के अंश है, हम सब आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश या आत्मा होने के कारण आत्मा निरंतरम, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। आत्मा का कभी नाश, परमात्मा और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, निरंतरम। ये श्लोक के दूसरे प्रारंभ में आत्मा और परमात्मा के गुण बताते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है, न जायते न म्रियते, नैनम चिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदंती आपको न शोष्यति मारुत। किसी भी शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता है और हवा के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। जब ऐसा ज्ञान हो जाए तब व्यक्ति कहां से डरेगा, भय का कोई प्रश्न ही नहीं। निरंतर और स्वयं स्वयं ज्योति, आत्मा और परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। और अणिमानम, आत्मा और परमात्मा अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। आप जानते हैं आत्मा का साइज क्या है? आत्मा माने हमारा साइज, आप जानते हैं? कोई भी पूछ दिया भाई आपकी साइज क्या है, तो 5 फुट 9 इंच। अरे ये तो हमारे शरीर की साइज है, हमारी साइज क्या है? आत्मा की साइज। शास्त्र में कहा गया है केशाग्र शतभागस्य पुनः शतांश करी। एक बाल को आप अपने हाथ में ले लीजिए, बाल की लंबाई नहीं, बाल का जो पॉइंट होता है ना, बाल के पॉइंट का केशाग्र, केश के अग्र भाग का शतभागस्य 100 हिस्सा कीजिए, हो नहीं सकता है। केश के पॉइंट का, बाल के पॉइंट का 100 भाग हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि केश के अग्र भाग के 100 हिस्से कर दिए हमने, फिर उस 100 हिस्से में से एक हिस्से को लेकर फिर से उनके 100 हिस्से कीजिए, अर्थात बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जो होता है वो है आत्मा का साइज। ये है हमारा साइज, और हम रहने के लिए हैं इतना स्क्वायर फुट चाहिए, इतना स्क्वायर फुट क्या, हमारी साइज तो बहुत कम है। इसलिए क्या कहते हैं, जब व्यक्ति ही सम हो जाता है, सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, तब वे अपने स्वरूप को जान सकता है। और हमारा स्वरूप क्या है? अणिमानम, हम बहुत सूक्ष्म है। और अखंडितम, अखंड है, आत्मा में कभी भी विकार नहीं आ सकते हैं। जैसे हमारे इस देह के 6 विकार हैं, यह देह जन्म लेता है, फिर वृद्धि होती है, फिर इसमें रोग आते हैं, फिर जीर्ण होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। इस देह में यह 6 प्रकार के विकार होते हैं, परंतु आत्मा में कभी भी विकार नहीं होते हैं। आत्मा जवान है, बूढ़ी है, नो टेंशन। तो जब व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ जाए कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, न जायते न म्रियते, तो बताइए वह व्यक्ति दुखी रहेगा? कभी नहीं, और सुखी हो जाएगा। परंतु ऐसा ज्ञान और विज्ञान तब आ सकता है जब हमारा मन शुद्ध हो जाए। तब देवहूति ने कहा कि जल्दी बताओ मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना है। आप लोग भी मन में सोचते होंगे, बताइए मन शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। तब अगले श्लोक में कहते हैं ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति युक्त चात्मना। यदि मन को शुद्ध करना है तो कुछ नहीं, मात्र भक्ति करनी होगी। भक्ति युक्तेन, भक्ति के द्वारा ही मन को शुद्ध किया जा सकता है। बिना भक्ति के मन शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? आप कितना भी प्रयास करो संसार में, परंतु वह प्रयास जो है भौतिक है। हमारे जितने भी प्रयास है ना, ये सारे प्रयास स्थूल है और मन जो है सूक्ष्म है ना? सूक्ष्म मन को स्थूल रूप से पकड़ा नहीं जा सकता है। तो सूक्ष्म मन को वश में करने के लिए सूक्ष्म कार्य करना है और वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम हमारे मन को वश में कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है श्रवण और कीर्तन। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, भक्ति भगवान का नाम लेना, यह है भक्ति। तो भगवान का नाम लेकर हम हमारे मन को वश में कर सकते हैं। आज संसार में मन नियंत्रण में नहीं होने के कारण बहुत लोग दुखी हैं। इस संसार में प्राय 90% बीमारी ही रोग मन से उत्पन्न होते हैं। ये हार्ट अटैक है, ये हार्ट अटैक मन का रोग है। बेचारे इतने टेंशन में होते हैं, इतने टेंशन में हार्ट अटैक आ जाता है। और प्राय टेंशन पुरुषों को होता है, घर चलाने का, पत्नी को चलाने का, पुत्र को चलाने का। पुरुषों को ज्यादा टेंशन है, इसलिए आप देखोगे कभी आपने ऐसा सुना ये स्त्री को हार्ट अटैक आया? कभी पेपर में पढ़ा कि फलानी महिला को हार्ट अटैक आया? होगा भाग्य में कुछ लोगों को, प्राय पुरुषों को ही हार्ट अटैक आता है। चिंता, मन में दुख, ग्लानी। तो मन से रोग आदि व्याधि उपाधि, तो इस प्रकार मन से। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना है? मनः त्राईते इति मंत्रः। मन को वश में करने के लिए मंत्र जपना होगा। मंत्र का अर्थ ही होता है, म का अर्थ होता है मन और त्र का अर्थ होता है त्राणना। जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र जपना है। एक बार एक बहुत बड़े सेठ थे और बहुत सारी फैक्ट्री चलती थी मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, गुजरात में, सोलापुर में, बहुत फैक्ट्री चलाते थे। बहुत धनी व्यक्ति थे और जो जितना ज्यादा धनी होता है ना वो उतना लोभी भी होता है। सेठ के मन में हुआ कि यार इतनी मेहनत और इतना परिश्रम, एक ऐसा आदमी मिल जाता जो मेरा सारा भार संभाल ले तो यार मजा आ जाता। तो एक दिन सेठ की इच्छा पूरी हो गई। एक प्रेत सेठ के सामने प्रकट हुआ। बोले सेठ देखो, आवाज भी किया एक प्रेत सेठ के सामने प्रकट हुआ और प्रकट होकर सेठ को कहने लगा, देखो मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण करूंगा। मैं तुम्हारा, आप देखो मत इधर उधर, वो प्रेत ही बोल रहा है। देखिए कहां से बज रहा है ये भाई, आप बजा रहे हो आप? कोई नहीं, मैं भी कुछ नहीं करूं। तो इस प्रकार से प्रेत बोल रहा है महामंत्र जपिए, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इष्टदेव प्रभु सोलापुर में दिन को भी प्रेत आते हैं। देखो आवाज आ रही है, देखो। ठीक है, तो सेठ के सामने प्रेत उत्पन्न हुआ। बोले तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं पूर्ण कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे आपको काम में लगाए रखना है और जिस दिन आपके पास काम खाली हो गया उस दिन मैं आपको खा जाऊंगा। सेठ ने कहा इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले बोलिए तो क्या काम करना है? बोले दिल्ली में जाओ, 10 साल का काम पेंडिंग पड़ा है करके। ये गया और 2 महीने में 10 साल का काम करके आ गया। बोले सेठ अब क्या करना है? बोले कलकत्ता में 5 साल का काम बाकी है। गया और 1 महीने में वो 5 साल का काम करके आ गया। बोले बॉम्बे में 2 साल का बाकी है, 15 दिन में वो काम करके आ गया। अब इसके पास काम खाली हो गया। अब सोलापुर में एक काम बचा था, बोले जाओ सोलापुर में, हमारी फैक्ट्री में एक साल का काम पेंडिंग पड़ा है। और ये सेठ समझ में आ गया कि अब ये दो तीन दिन में वापस आएगा, मैं उसको क्या काम दूंगा, काम तो सब खाली हो गया, और यदि उसको काम नहीं दूंगा तो ये मुझे खा जाएगा प्रेत। तो इसने भेजा अपनी फैक्ट्री में और ये गया अपने गुरु के पास, गुरुजी एक प्रेत मिल गया और अब वो मुझे खा जाएगा। गुरुजी ने कहा कि देखो मैंने पहले कहा था लोभ मत करना, लेकिन लोभ किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें एक प्लान देता हूं, ये प्लान तुम अपनाओ। गुरुजी ने प्लान दिया। गुरुजी क्या करते हैं, प्लान ही देते हैं, जादू मंत्र नहीं करते हैं, वो अपनी वाणी से उपदेश देते हैं और क्या करते हैं। गुरुजी ने उपदेश दिया, उस उपदेश को सुनकर ये सेठ जी घर पर आया तो प्रेत बैठा था। कहां गए थे सेठ, आपकी राह देख रहा हूं कभी से। बोले काम दो काम, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोले चलो मेरी गाड़ी में बैठो। उस प्रेत को गाड़ी में बिठाया और बहुत बड़ा खेत था उस सेठ का, उस खेत के बीचों बीच लेकर गए। एक काम करो, यहां 200 फुट का खड्डा करो। प्रेत ने 2 मिनट में 200 फुट का खड्डा कर दिया और उस खड्डे के बीच में एक 200 फुट का बंबू गाड़ दो। प्रेत ने बंबू गाड़ दिया। सेठ ने कहा एक काम करो, अब इस बंबू के ऊपर चढ़ जाओ। प्रेत छलांग मार के बंबू के ऊपर चढ़ गया और सेठ ने कहा अब इस बंबू से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जब तक मैं ना कहूं तब तक करते रहो। सेठ गाड़ी लेकर घर पे चला गया और ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखिए सेठ और कोई नहीं, हम लोग ही हैं, और ये प्रेत जो है और कोई नहीं, हमारा मन। खाली मन शैतान का घर। मन जब तक काम में लगा है तब तक कोई बात नहीं, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक लगाना चाहिए, लेकिन ये खाली हो गया तो हमें खा जाता है। तो इस मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जो बंबू है और कुछ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, हमारी माला को हाथ में ले लेना चाहिए और मन को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मन रूपी प्रेत को इस माला में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कराते रहना चाहिए ताकि हम इससे मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार भगवान कपिल देव कहते हैं कि मन को यदि वश में करना है तो भक्ति युक्तेन चात्मना, भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम, भगवत कथा। इस संसार में कुछ लोग भक्ति करते हैं, नहीं भक्ति नहीं करते हैं, केवल भक्ति का दिखावा करते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े वैरागी हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी वैरागी। एक बार राजस्थान में मेरी कथा थी, वहां के महात्मा आए, महात्मा थे नहीं, अपने आप को मानते थे महात्मा, आकर बैठ गए और बैठ कर कहे देखो वैसे तो मैं बहुत जानता हूं, बहुत जानता हूं, बहुत बोला, परंतु अब मेरा मौन है, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं सब कुछ जान रहा था कि ये मूर्ख कुछ नहीं जानता है और संसार के लोगों को ठग रहा है। यदि उसे 1 घंटा बोलने के लिए कहा जाए तो पता चल जाएगा कितना ज्ञान है, कितना दूध और पानी में। इसलिए वो लोग सोचते हैं मौन ले लेना ही अच्छा है, संसार के लोग मौन ही बाबा आदर करेंगे। कुछ लोग वैराग्य दिखाते हैं कि हम वैरागी हैं, साधु हैं बाबा। एक बार एक गांव में ऐसे ही वैरागी आए और पूरा गांव उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो एक व्यक्ति था, जिलेबी लेकर गया, बाबा जी आप ये जिलेबी खाइए। तो ये तो वैराग्य का नाटक कर रहे थे, इतना जोर से मारा 50 फुट दूर जिलेबी गिरी। बोले मूर्ख बच्चा जानता नहीं है हम वैरागी है, तो क्षमा कीजिएगा बाबा जी हमसे भूल हो गई। फिर दोपहर का समय, धूप का दिन था, 3 बजे कौन बाबा का दर्शन करने के लिए आए। बाबा ने देखा कि अब कोई आने वाला नहीं है, खड़े हुए और खड़े होकर वो 50 फुट दूर जाकर जिलेबी लिए और मिट्टी निकाल कर जिलेबी को खाने लगे। परंतु जिलेबी लाने वाला जो था ना वो उस्ताद था, पेड़ के पीछे से निकला, बाबा जी यदि खाना ही था तो फेंक क्यों दिया आपने। कुछ लोग ऐसे वैरागी होते हैं, दिखाने का ड्रामा करते हैं। देखिए वैराग्य जो है, मात्र वैराग्य, कोरा वैराग्य कुछ काम का नहीं है। यहां पर कहते हैं भक्ति युक्तेन, वैराग्य जो है भक्ति से युक्त होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य युक्तेन, भक्ति युक्तेन, ये दोनों एक ही विभक्ति में है। और जब समान विभक्ति, व्याकरण का यह नियम है कि जब किसी भी शब्द में समान विभक्ति लगती है तो दोनों में संबंध होता है। तो आप देख सकते हो ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन, तेन तेन शब्द दोनों में लगा। तो इसलिए भक्ति जो है ज्ञान वैराग्य से युक्त होनी चाहिए। परंतु संसार के कुछ लोग होते हैं भक्ति नहीं करते हैं परंतु दिखाते हम ज्ञानी हैं, हम वैरागी हैं। वे ज्ञान और वैराग्य कुछ काम का नहीं जिसमें भक्ति नहीं है। और बिना भक्ति का ज्ञान वैराग्य टिकता भी नहीं है। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग्य कभी कभी हमें भी आ जाता है वैराग्य, संसार के लोगों को। कब? जब किसी की मृत्यु हो जाती है और शमशान यात्रा में जाते हैं और आंखों के सामने देखते हैं कि हमारी तरह हमारे साथ बोल रहा था और बेचारा जल गया, वैराग्य हो जाता है। अरे बाप रे, अब तो कुछ काम का नहीं है, हमारा धन बस ये धरा का धरा रह जाए। शमशान में खड़े खड़े बहुत वैराग्य होता है, लेकिन जैसे ही शमशान के गेट के बाहर निकले हैं, तुरंत ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, सारा वैराग्य चला जाता है। इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। कुछ समय के लिए भावुकता आती है फिर चली जाए। ऐसा वैराग्य कुछ काम का नहीं है। भक्ति युक्त, भक्ति से युक्त वैराग्य होना चाहिए। भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आप यदि भक्ति करते हो तो ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त करने की और वैरागी बनने की जरूरत नहीं। आप भक्ति करो, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा, लाने की जरूरत नहीं। अब बताइए हमें किसने सिखाया था कि सोलापुर में जाकर बेटा ऐसे बोलना है, ऐसी बातें करना? कोई नहीं। भक्ति करते हैं, ज्ञान वैराग्य आ रहा है, हालांकि इतना नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि हमारी भक्ति भी बहुत कम है। परंतु भक्ति करने से, मैं आपको अपनी सत्य बात बताऊं, मैं जब स्टडी करता था तो 10th में मुझे 36% आए थे, 36% लेकर मैं पास हुआ था बोर्ड की एग्जाम में। तो आप जान सकते हो हम पढ़ने में कितने एक्सपर्ट थे या ठग थे। 1% कम होता फेल हो जाते। परंतु मैंने भक्ति शुरू की 11th 12th के बाद SYJC से, लेकिन उस समय मुझे कुछ याद नहीं रहता था। 10th में था तो बहुत पढ़ता था लेकिन याद नहीं रहता। लेकिन जब भक्ति करने लगा, भक्ति करने लगा तो घंटों भर बिना देखे बोल सकते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति से आता है, कोरा ज्ञान वैराग्य। मैंने कल भरतहरि की कथा सुनाई थी ना, तो भरतहरि जो है उनको वैराग्य हुआ लेकिन भक्ति से वैराग्य नहीं हुआ था, उनका मरकट वैराग्य था। उन्होंने वैराग्य ले लिया, लाल कपड़े पहन लिए, जंगल में चले गए और दूसरे छोर में उस भरतहरि का एक भांजा था जिसका नाम गोपीचंद, राजा था। उस गोपीचंद का जब राज्य अभिषेक किया जा रहा था तब उसे पता चला कि मेरे पिताजी मेरी तरह राजा थे और मर गए। उसे भी वैराग्य हुआ। गोपीचंद और भरतहरि दोनों को वैराग्य, बिना भक्ति का कोरा वैराग्य। और गोपीचंद भी अपना घर बार छोड़कर चले गए, मामा भी भटक रहे हैं जंगल में और भांजा भी भटक रहा है जंगल में। भजन भक्ति नहीं है, बस वैराग्य है। हम देखते ना हरिद्वार में बहुत सारे लाल कपड़े में घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, धन को छोड़ दिया, ऑफिस को छोड़ दिया, परंतु हरिद्वार में चाय की लाइन में खड़े रहते हैं। लोग चाय दान करते हैं ना तो उसकी लाइन में चाय पीने के लिए, चाय को नहीं छोड़ सकते। वैराग्य दिखाने का। ये दोनों जंगल में भटक रहे हैं। एक दिन की बात, वो भरतहरि जो सन्यासी के वेश में थे, घूमते घूमते एक गांव में आए। और गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष में एक खूंटी लगी हुई थी, उस खूंटी पर अपना झोला टांग दिया और उसके नीचे सो गए। एक घंटे के बाद वह जगे, उसे भूख लगी तो झोला उस खूंटी पर रहने दिया और गांव में मधुकरी करने के लिए गए। उतने में वह गोपीचंद सन्यासी के वेश में आया और देखा पेड़ बहुत अच्छा है, इसके नीचे सोना चाहिए। लेकिन गोपीचंद ने देखा कि एक खूंटी पर एक किसका किसकी बोरी लटकी है, तो अपने अपना जो झोला था वो खूंटी से दूसरे का किसी का झोला था खूंटी से उतार दिया और अपना झोला टांग दिया और गोपीचंद सो गया। कुछ देर के बाद भर्तरी आए, दोनों मामा भांजे पहचान नहीं रहे थे क्योंकि दोनों सन्यासी के वेश में। उसने कहा ये मेरा झोला नीचे किसने रखा? बोले मैंने। बोले मैं जब यहां पर आया तब कोई नहीं था इसलिए मैं सो गया, मेरा झोला टांग दिया। बोले ये खूंटी मेरी है, पहले यहां पर मैं आया था, मैंने मेरा झोला टांगा था। बोले नाम लिखा है, एग्रीमेंट है, मैं जब आया तब कोई नहीं था, खूंटी मेरी है। वो भर्तरी कहने लगा खूंटी मेरी है, ये कहने लगा खूंटी मेरी है, ये खूंटी मेरी मेरी करते दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बड़ा हाथापाई होने लगी। दोनों एक दूसरे को मारने लगे, पीटने लगे। तब इतना बड़ा झगड़ा हुआ तो एक बुढ़िया वहां से निकली और उस बुढ़िया ने कहा देखो तुम लोग साधु सन्यासी होकर झगड़ा कर रहे हो, सुना है भर्तरी का नाम 1800 गांव के राजा थे और गोपीचंद कितने बड़े राजा, ये दोनों ने अपना राज रजवाड़े छोड़ दिए और जंगल में चले गए और तुम साधु होकर खूंटी के लिए झगड़ रहे हो। तब ये दोनों के मन में हुआ अरे बाप रे, पूरा संसार छोड़कर सब कुछ छोड़कर हम जंगल में निकले और खूंटी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ये है मरकट वैराग्य, बिना भक्ति के ऐसा वैराग्य होता है। तो 10 बजे भक्ति युक्त वैराग्य होना चाहिए। तो हे मां, मन को वश में करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। परिपश्यत दासीनम प्रकृतिम च हतोजसम। और जब इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम भगवान को समझ सकते हैं और आत्मा को भी समझ सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है। और भक्ति के द्वारा व्यक्ति समझ सकता है परिपश्यति उदासीनम, भगवान जो है उदासीन है। उदासीन अर्थात भगवान इस जगत के किसी भी प्रकृति के नियम से बंधे नहीं है, इस प्रकृति से उदासीन है। तो इस प्रकार भक्ति के द्वारा व्यक्ति यह समझ सकता है। अगले श्लोक में कहते हैं माते, इस संसार में मन को वश में करने के लिए भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं है। न युच्य मान या भक्त्या भगवती अखिल आत्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्ध। इस संसार में सुखी होने के लिए, वर्तमान में सुखी होने के लिए और मरने के बाद सुखी होने के लिए और मन को वश में करने के लिए भक्त्या सीदृश भक्ति के समान शिव पंथा कल्याणकारी मार्ग अन्य न अस्ति, अन्य कोई नहीं है, कोई नहीं। भक्ति के समान आप अन्य कोई भी मार्ग करोगे तो उसमें न तो वर्तमान में सुखी हो सकते हो न भविष्य में। और वो मार्ग भी भक्ति को छोड़कर अन्य जितने भी मार्ग हैं वे सभी मार्ग में भय है, उस मार्ग से गिरने का भय, कुछ गलती हो जाने का भय। परंतु भक्ति मार्ग में कोई भय नहीं। धावन मिलिनमान नेत्रे न स्खलेत न पतेत, इस भक्ति के मार्ग में कोई आंख बंद करके भी दौड़ने लगे, आंख बंद करता था आंख बंद करके प्रवचन सुनना ये नहीं। कुछ लोग सोचते हैं भक्ति के मार्ग में आंख बंद करके हम दौड़ेंगे, बात को समझना चाहिए। आंख बंद श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने कहा है श्रुति स्मृति उभे नेत्रे, श्रुति और स्मृति ये हमारे दोनों नेत्र है, आंख है। परंतु यदि श्रुति के बारे में भी न जाने, स्मृति के बारे में भी न जाने, शास्त्र का कोई ज्ञान न हो, लेकिन फिर भी भगवान का नाम जपता है, तो न स्खलित न पतित, न तो गिरेगा न तो पतित होगा, वह निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। ये है भक्ति। और अन्य मार्ग में आप कितनी भी बड़ी तपस्या करो, होम हवन यज्ञ करो, थोड़ी भी गलती हो गई तो गए काम से। शोभरी ऋषि ने तपस्या की, कितनी 60,000 वर्ष तक तपस्या, और सोचे कि यार यहां सिटी में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, और गांव में भी अब फैक्ट्री इतनी खुल गई है, डिस्टर्बेंस बहुत है, क्या करूं। बोले पानी में जाकर तपस्या करूंगा। शोभरी ऋषि यमुना के जल में, पानी में बिल्कुल गहराई में चले गए और पानी में जाकर तपस्या शुरू की। 60,000 वर्ष तक पानी में तपस्या की, एक दिन आंख खुली तो मछली का मैथुन देख लिया, और मछली के मैथुन को देखकर सोचे अरे बाप रे, वास्तविक आनंद तो ये मछली ले रही है। तुरंत पानी से बाहर निकले और सोचे कि अब विवाह करूंगा। मान दाता की 50 कन्या के साथ शोभरी ने विवाह किया। 60,000 तपस्या करने के बाद भी ये शोभरी शुद्ध नहीं हुआ। परंतु दूसरी ओर देखिए, हरिदास ठाकुर केवल भगवान का महामंत्र जपते थे, साक्षात माया एक वेश्या हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए आई, परंतु वह वेश्या हरिदास ठाकुर को विचलित तो नहीं कर पाई। 3 दिन हरिदास ठाकुर के पास बैठी, वह वेश्या भी हरिदास ठाकुर की तरह भक्त बन गई। ये है भक्ति का प्रभाव। भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि जिसमें कोई भय नहीं है, भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, ब्रह्मा जी की भक्ति की, 36,500 वर्ष तक तपस्या, लेकिन ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को बचा नहीं पाए। रावण शिव जी का भगत था, परंतु भगवान राम मार रहे थे, शिव जी बचा नहीं सके। कंस दुर्गा देवी का भक्त था, शाम की कथा में आएगा, भगवान कंस को भी मारेंगे परंतु दुर्गा देवी बचा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता है, और भगवान जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है, और उस भगवान की भक्ति सर्वोच्च है। तो आप सब भक्त हैं, इस बात को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, इतना ही समझिए। भगवान कपिल देव कहते हैं, भक्त्या सदृश भक्ति के समान शिव पंथा कल्याणकारी मार्ग अन्य कश्चित न अस्ति, अन्य कोई नहीं है। यह प्रूढ़ कर दिया भगवान कपिल देव। तब देवी देवहूति ने पूछा, प्रभु ठीक है, अब समझ में आ गया कि बस अब भक्ति ही करनी है, ये सब व्रत योग दान तपस्या ये सब कुछ जो है तुच्छ है निम्न है, अब मैं भक्ति ही करूंगी। परंतु भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? देवहूति का प्रश्न है, और 20वें श्लोक में भक्ति कैसे प्राप्त होती है इसका उत्तर दे रहे हैं, परंतु इसका उत्तर हम कल सुनेंगे कि आज सुनना है, अब कल का ही दिन बाकी रहा है, थोड़ा सुन लेते 10-15 मिनट। तो देवहूति ने जिज्ञासा की कि बताइए, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही भौतिक और आध्यात्मिक समस्या का समाधान है, तो प्रभु बताइए भक्ति कैसे प्राप्त होती है, हमें भक्ति कैसे मिलेगी? तब इसका उत्तर देते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानं कवयो विदो स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वार अपावृतम्। एक ही श्लोक में और एक ही शब्द में जवाब दे दिया कि हे मां, यदि भक्ति प्राप्त करना है तो प्रसंगम अजरम पाशम, प्रकृष्ट रूपेण संग साधुषु एव ही। यदि भक्ति प्राप्त करना है तो साधुओं का संग करना चाहिए। साधु संग करने से ही भक्ति मिलती है। भक्ति करने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बिना साधु संग किए भक्ति में लगा हो। एक भी चैलेंज के साथ आप लोग यहां पर क्यों आए हो? कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई भक्त आपको मिला, आपने उसका संग किया, तब आप यहां तक पहुंचे। और यहां से भी भगवान के धाम में तब पहुंचोगे जब साधुओं का संग करते रहोगे। और कहते हैं प्रसंगम आत्मानम अजरम पाशम। सबसे पहले ये कहते हैं कि भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति आत्मा के लिए अजरम पाशम, आत्मा के लिए बंधन है। कैसा? अजर अमर बंधन है। भौतिक संसार में आसक्ति आत्मा का नित्य बंधन। हम सोचते हैं कि हम आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। कुछ कहते हैं ना कि अभी तो गृहस्थी में है भाई, पत्नी के और पुत्र के प्रति आसक्ति तो होनी चाहिए ना, ऑफिस के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। समय जाते ही ऑटोमेटिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। समय आने तो ऑटोमेटिक, अरे ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है? एक बच्चा जन्म लिया और उसे छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक सीख लेगा। क्या सीख लेता है? अरे उसे सिखाना पड़ता है। वैसे ही आसक्ति से मुक्त होना है तो वह ऑटोमेटिक नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। उस आसक्ति से मुक्त होने का अभ्यास करना होगा। और यदि अभ्यास नहीं किए तो कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। आत्मा के लिए यह आसक्ति जो है अजर पाश है, बहुत बड़ा बंधन है। और कितना बड़ा बंधन? कहते हैं अजर, नित्य बंधन है। तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? इसी श्लोक में उपाय देते हैं। स एव, कहते हैं हम जो आसक्ति संसार के लोगों में कर चुके हैं, पत्नी पुत्र धन गाड़ी बंगला, इसमें जो हम आसक्ति कर चुके हैं, स एव वही आसक्ति साधुषु कृतो, वही आसक्ति साधुओं में कर दो, आपका काम बन जाएगा। साधुओं में आसक्ति करने से भक्ति प्राप्त हो सकती है। और इतना ही नहीं, स एव साधुषु कृतो, साधुओं में आसक्ति कृत करने से मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। देखिए जिस दिन से साधु संग हो गया उस दिन से हमारे मोक्ष का जो द्वार है वो खुल गया, खुला हुआ द्वार। साधु संग जो है वैकुंठ का खुला द्वार है। देखिए भगवान इतने सतर्क हैं, कपिल देव जी बोलने में उन्होंने कहा मोक्ष द्वार अपावृतम। अपावृतम का अर्थ है खुला हुआ। कभी कभी होता है कुछ लोग यहां से जाते हैं भगवान के धाम में तो दरवाजा बंद रहता है, लेकिन ये कहते हैं कि खुला द्वार है। एक बार मैंने किसी भक्त के मुख से सुना था, एक कौतुक की बात, मैंने प्रवचन किया तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया। बताए अनाउंसमेंट क्या किया? कि वाह बहुत धन्य है प्रभु जी, और प्रभु जी से भी ज्यादा कृपालु है सुनने वाले। बोले क्यों पता है? क्योंकि आप लोग ध्यान से प्रभु जी के मुख से कथा सुन। और वास्तव में जो लोग, फिर उसने एक दृष्टांत दिया कि एक समय की बात, एक व्यक्ति प्रचार करते थे, प्रवचन करते थे, और प्रवचन करते 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 मृत्यु हो गई तो वैकुंठ में गए, तो वैकुंठ में भगवान के द्वार पर उसे वेटिंग में खड़ा रखा गया। चलो रुको, अंदर अभी नहीं लिया गया। और एक बस का ड्राइवर था, मरने के बाद वह भी वैकुंठ में गया और उस बस के ड्राइवर को सीधा अंदर ले लिया वैकुंठ। तो ये प्रवचन करने वाले को प्रश्न उठा, तो मैं तो रात दिन प्रवचन कर करके थक गया और मुझे यहां बाहर वैकुंठ में बिठाया, और ये बस का ड्राइवर सीधा वैकुंठ के अंदर चला गया। ऐसा क्यों? इंटरकॉम से अंदर फोन लगाया भगवान को कि ऐसा कैसे? ड्राइवर को तुरंत अंदर ले ले। बोले ये सरकारी बस का ड्राइवर था और बस ऐसे 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 चलाता था और कभी अचानक ब्रेक मारता था तो बस के जितने भी यात्री थे जब वो ब्रेक मारता था तो हे राम, और पूरी रात भर बस चलाता था और यात्रियों को रात भर सोने नहीं देता था। याद स्पीड ब्रेकर में इतना तेज गति से लेकर जाता था हे राम, ब्रेक मारता था हे राम, एक्सीडेंट होते होते बच जाते थे हे राम। बोले देखो तुम प्रवचन करते थे सब लोग सोते रहते थे और ये ड्राइवर जब बस चलाता था सबको जगाता था और भगवान का नाम बुलवाता था इसलिए अंदर चला गया। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो मैं तो यही एक कौतुक की बात है, मैं तो ये कह रहा हूं मोक्ष द्वार उपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कभी कभी मन में ये हो कि भगवान के धाम में वैकुंठ में भी वेटिंग करना होगा, नहीं, खुला हुआ द्वार, मतलब द्वार वहां आप जाओगे साधु संग करोगे तो द्वार खुला होता है, बस आपको प्रवेश होना है। ये है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति का मूल क्या है? कहते हैं साधु संग। साधु संग करने से ही भक्ति प्राप्त होती है, और साधु का संग नहीं करते हैं असत संग करते हैं तो नरक का द्वार खुल जाता है। तमो द्वारम योषिता संगी संगम, साधु संग करना चाहिए। रूप गोस्वामी ने भी भक्ति के 8-9 स्तर बताए, उनमें से सबसे पहला है श्रद्धा और फिर साधु संग। श्रद्धा से साधु संग करोगे फिर भजन क्रिया होगी, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और फिर प्रेम और फिर भगवान का धाम मिलेगा। साधु संग के द्वारा ही हमें भक्ति मिल सकती है। और उससे बिल्कुल उल्टा कि असत लोगों का संग करोगे जो साधु नहीं है, ऐसे लोगों का संग करोगे तो नरक का द्वार खुल जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए? असत संग त्याग। तो मानो चैतन्य महाप्रभु को पूछा असत किसे कहते हैं, असाधु किसे कहते हैं? तो महाप्रभु कहते हैं स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त है, जो स्त्रियों का संग करता है, जो रात दिन स्त्रियों की चर्चा करते रहता है, फिल्म देखता है और भौतिक विषयों में रचा पचा है, और जो कृष्ण का नाम नहीं लेता है वह सब असाधु है। ऐसे लोगों का संग थोड़ा भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम इतने स्ट्रांग है असत संग हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगा। अरे कर ही देता है। आप कितने भी स्ट्रांग भक्ति में हो लेकिन असत संग थोड़ा भी किया तो उसका प्रभाव आ ही जाता है। पद्म पुराण में कथा है, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था लेकिन कोई शिकार मिला नहीं, तो एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। हवा के कारण वह वृक्ष की डाली हिल रही थी और उसमें से प्रकाश उसके मस्तक पर आ रहा था, बेचारा डिस्टर्ब हो रहा था। उसी समय एक हंस, मान सरोवर का हंस, उड़ते उड़ते उस वृक्ष के ऊपर आकर बैठा और देखा कि बेचारा शिकारी परेशान है, इसलिए हंस अपनी पंख को फैला दिया और सूर्य के प्रकाश को रोक लिया, शिकारी आराम से सो गया। कुछ देर के बाद उस हंस जिस डाली पर बैठा था उसी डाली पर एक कौवा आकर बैठ गया। कौवे का स्वभाव तो आप जानते हैं, जहां बैठते हैं वहां बिगाड़ देते हैं। उस कौवे ने तुरंत मल त्याग किया और वह शिकारी के ऊपर गिरा, शिकारी तुरंत उठ गया। शिकारी जगा तो कौवा तो फर करके उड़ गया, हंस बैठा था। शिकारी ने बाण लेकर उस हंस को भेद दिया, हंस मर गया और उस डाली से गिर गया। मरते मरते हंस ने इतना ही कहा, अरे मैं तो इतना अच्छा मान सरोवर का हंस था और आपकी आपको सुख देने के लिए यहां बैठा था, आपने मुझे मार दिया, मेरा क्या दोष था, मेरा दोष बताओ। तब शिकारी ने कहा कि आप बहुत अच्छे थे, अच्छे परिवार से थे, आपका संस्कार भी बहुत अच्छा था, लेकिन आपका एक ही दोष, वह कौवा जब आपके बाजू में आकर बैठा तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। आपने एक घड़ी के लिए कौवे का संग किया, आज आपको मरना पड़ा। ठीक उसी प्रकार हम भले कितने भी अच्छे परिवार से हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छा कार्य है हमारे, लेकिन कुछ घड़ी भी गलत संग कर दिया तो माया का प्रभाव ऐसे कर ही दे, इससे बच नहीं पाएंगे। इसलिए असत शास्त्र में अनेक घटनाएं हैं, असत संग करने के कारण व्यक्ति का पतन हो गया, तो असत संग त्यागना है और भक्ति करने के लिए साधु संग करना चाहिए, साधुओं से मिलना, उसका संग करना। तो भगवान कपिल देव ने साफ साफ कह दिया कि मां भक्ति करना है तो साधुओं का संग करो। तब देवहूति ने अगला प्रश्न पूछा, तो प्रभु साधु किसे कहते हैं? आज वर्तमान में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, यहां पर मंदिर में आते हैं तो सामने ही दूसरा गेट है, साधु उस गेट में है कि इस गेट में है, तुरंत प्रश्न। जो बेचारे कुछ नहीं जानते तो उसके मन में प्रश्न होंगे ना कि साधु किसे कहते हैं। तब भगवान कपिल देव साधुओं के लक्षण बताएंगे आगे, तो प्रवचन हम कल सुनेंगे, साधु किसे कहते हैं, साधु कैसा होता है और साधुओं में कैसे साधु का हमें संग करना चाहिए। नए भक्तों को लगता है कि बस सब लोग भक्त हैं, सब शुद्ध भक्त, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमसे जो आगे हैं उसका संग करना चाहिए, तब हम आगे। तो भगवान कपिल देव कहते हैं साधु वेश धरी साधु न होई, मात्र कपड़े बदल देने से कोई साधु नहीं हो जाता, कंठी और तिलक करने से कोई साधु नहीं हो जाता, गुण से व्यक्ति साधु बनता है। और साधुओं के क्या गुण है ये आपको कल बताएंगे, तब तक के लिए सबके चरणों में प्रणाम और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
अब 21वें श्लोक से साधुओं के लक्षण तितिक्ष्व कारुणिका बहुत सुंदर कथा आएगी, तो आप सब भक्तों से निवेदन है आप आइए और इस कथा को सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।